कानूनी दृष्टिकोण से स्थिति को और अधिक विस्तार से समझने के लिए मैंने अधिवक्ता तरुणजीत वर्मा से संपर्क किया। जब मैं उनके घर जा रहा था तो मैं डाकघर की इमारत पर रुका। एक आम डाकघर की इमारत से अलग यह उबाऊ नहीं था। एक राजसी दो मंजिला पत्थर की संरचना जिसमें कई कक्ष थे, जिनमें पत्थर के चौखट थे जिन पर चित्र अंकित थे। ड्रिलिंग मशीन के साथ एक आदमी अपनी पहली सफलता पाने के लिए अथक प्रयास कर रहा था। सड़क के दूसरी तरफ मजदूर एक एक पत्थर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैंने सोचा कि आखिर भारतीय राज्य इतनी खूबसूरत कलाकृति को क्यों ध्वस्त करना चाहता है? वे इसका जीर्णोद्धार क्यों नहीं कर सकते और इसका व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग क्यों नहीं कर सकते? फिर भी मैं अधिवक्ता से मिला, एक जीवंत मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो राम जन्मभूमि के बारे में हर विवरण और किस्से को अच्छी तरह से जानता था। वह वकीलों की उस पीढ़ी से थे जिन्होंने ब्रिटिश काल से ही निर्मोही अखाड़े के जन्म स्थान पर दावे का प्रतिनिधित्व किया था। तरुण ने भारत में किसी भी सरकार के कानूनी तौर तरीकों के बारे में बताया जब वे इतने बड़े पैमाने पर बदलाव करते हैं। सबसे पहले एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का पूरा खाका तैयार किया जाता है, फिर रिपोर्ट को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, फिर नागरिकों को सुझाव या अपील करने के लिए कुछ समय दिया जाता है। यहाँ ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। सहमति पत्र पर मूल मालिक के हस्ताक्षर ही होते हैं और संरचना बन जाती है, और इसके पीछे वित्तीय और अन्य लेन देन और सौदे रहस्य में लिपटे रहते हैं। शुरुआती योजना सड़क की चौड़ाई को 10 मीटर तक बढ़ाने की थी, फिर अचानक इसे कुछ जगहों पर 24 मीटर तक बढ़ा दिया गया, और अधिकारी हमेशा इस तरह के तदर्थ उपायों के लिए एक आधिकारिक जवाब के साथ तैयार रहते हैं, ऊपर से आदेश हैं। कई अधिकारियों से बातचीत करने के बाद तरुण इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अयोध्या में एकमात्र योजना कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा, अगर कोई योजना है भी तो उसे दिल्ली में कहीं गुप्त रखा गया है। अभी उनकी जानकारी के अनुसार पुराने शहर में इलेक्ट्रिक बसों के लिए 6 बस स्टॉप होंगे और सरकार चाहती है कि 2024 के चुनाव से पहले शहर तैयार हो जाए। इस समय सीमा को पूरा करने के लिए अधिकारियों को पूरी ताकत दी गई है और पूरा राज्य तंत्र ओवरटाइम काम कर रहा है, सचमुच कार्यालय समय के बाद भी। तरुण ने मुझे बताया कि रात के अंधेरे में स्ट्रीट लाइट चमत्कारिक रूप से बंद हो जाती है, फिर अर्थ मूवर्स के रॉक बकेट के जोरदार प्रहार से न केवल दीवारें टूट जाती हैं बल्कि लोगों का प्रतिरोध करने का मनोबल भी टूट जाता है। भ्रष्टाचार के बारे में क्या? भ्रष्टाचार और कटौती किसी भी बड़े पैमाने की परियोजना के उप उत्पाद हैं। तरुण ने राज्य तंत्र के अधिकारियों को पैसे दिए जाने के कई मनोरंजक उदाहरण साझा किए। एक दुकानदार को मुआवजे के रूप में आवंटित राशि का केवल 10% मिला और बाकी राज्य के अधिकारियों ने गटक लिया। निस्संदेह व्यापारी और नागरिक असंवेदनशील प्रशासन से नाराज हैं और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी स्थानीय नगरपालिका चुनावों में इसका असर महसूस कर सकती है। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि यूपी सरकार ने चुनाव में रणनीतिक रूप से देरी की है। देरी का कथित कारण चुनावों में ओबीसी के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की पार्टी की प्रतिबद्धता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा ओबीसी आरक्षण के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का फैसला किया है। इस प्रकार राज्य सरकार ने विध्वंस प्रक्रिया को पूरा करने और फाइलों को निपटाने के लिए समय खरीदा है। निर्मोही अखाड़े के लिए एक बुरा सौदा तरुण के लिए घटनाक्रमों की श्रृंखला का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वह राम जन्मभूमि के फैसले के दिन से ही राज्य से निराश थे। तरुण का दावा है कि भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने निर्मोही अखाड़े के सेवा अधिकारों को स्वीकार कर लिया था, जिसने 1858 में राम जन्मभूमि के लिए शीर्षक मुकदमा दायर किया था, लेकिन अंतिम निर्णय में संपूर्ण स्वामित्व श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को चला गया और निर्मोही अखाड़े को ट्रस्ट में एक अस्पष्ट उचित भूमिका के साथ सांत्वना दी गई। मैं सीता रसोई के भाग्य के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था। मुझे बहुत निराशा हुई जब मैंने पाया कि यह वास्तव में 2020 में नष्ट हो गई थी। 2000 के दशक की शुरुआत में अयोध्या शहर में बम विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई। सीता रसोई इसके लक्ष्यों में से एक थी। हालांकि आतंकवादी इसे उड़ाने में विफल रहे, लेकिन राज्य ने खुद ही यह प्रक्रिया पूरी कर ली। राम जन्मभूमि के आसपास 13 मंदिर थे, उनमें से 11 निर्मोही अखाड़े के थे। 1990 के दशक के अधिग्रहण के बाद से एक या दूसरा मंदिर गायब हो गया है। तरुण ने चुटकी ली कि वे फकीर राम मंदिर के विध्वंस के खिलाफ स्थगन आदेश प्राप्त करने में सक्षम थे। फकीर राम का नाम मेरे कानों में गूंज उठा जब मुझे काशी में पता चला कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मंदिर को ढहाने से रोकने के लिए एक मामला दायर किया था, जो जाहिर तौर पर उस स्थान पर था जहां माना जाता है कि श्री राम ने अपने वनवास के लिए प्रस्थान करने से पहले अपने शाही परिधान बदले थे। एक और मंदिर जिसे राज्य ध्वस्त करना चाहता था वह था रामगुलेला मंदिर, लेकिन तरुण के कानूनी हस्तक्षेप के कारण उसे पीछे हटना पड़ा। जिस तरह से अब तक चीजें आगे बढ़ी हैं, ऐसा लगता है कि राज्य को राम जन्मभूमि के आसपास की हर पवित्र संरचना से कोई ना कोई शिकायत थी, क्योंकि सड़कों को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि उनके सामने विध्वंस ही एकमात्र विकल्प था। अफवाहें यह भी जोर पकड़ रही हैं कि राज्य नागेश्वर नाथ मंदिर के लिए एक और गलियारे की योजना बना रहा है। लिखित और मौखिक पवित्र ग्रंथों के अनुसार नागेश्वर नाथ महादेव की प्राण प्रतिष्ठा श्री राम के पुत्र कुश ने की थी। इन ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग में अयोध्या को छोड़ दिया गया था और परिणाम स्वरूप यह घने जंगल से आच्छादित था। राजा विक्रमादित्य ने नागेश्वर नाथ को पहचान कर पूरे शहर को फिर से खोजा और उसका पुनर्निर्माण किया। नागेश्वर नाथ मंदिर के आसपास की गलियों में टहलते हुए मैं स्थान और समय के एक अलग क्षेत्र में प्रवेश कर गया। यह अयोध्या के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है। इसकी बाहरी दीवारों पर ऋषियों की मूर्तियों के साथ जटिल पुष्प पैटर्न हैं। अलंकृत स्तंभ अप्सराओं की मूर्तियों से सुशोभित हैं। मंदिर के दाईं ओर की गली में दो मंदिर हैं, गोरे राम मंदिर और काले राम मंदिर, एक दूसरे के आमने सामने। काले राम मंदिर में श्री राम की मूर्ति है जो 22 दिसंबर 1949 की दुर्भाग्यपूर्ण रात को प्रकट हुई थी। यूरोपीय शहर अपने पुराने शहरों की इमारतों की एक एक ईंट को सावधानीपूर्वक संरक्षित करते हैं। स्विट्जरलैंड तो पहाड़ों में मध्ययुगीन झोपड़ियां भी किराए पर देता है, लेकिन यहां राम की पैड़ी पर प्राचीन राजाओं द्वारा निर्मित एक सदियों पुराना भवन अत्यधिक उपेक्षा में पड़ा है। परित्यक्त मंदिरों के चारों ओर कूड़ा कचरा बिखरा पड़ा है। यहां तक कि एक नास्तिक सरकार भी हर ईंट को संरक्षित करने के लिए पुरातत्वविदों, संरक्षणवादियों या कला इतिहासकारों की एक सेना बुलाएगी। मेरी राय में हर परित्यक्त मंदिर का पुनः अभिषेक किया जाना चाहिए और देवता की सेवा के लिए एक पंडित को नियुक्त किया जाना चाहिए, और दुनिया भर के हिंदू इस तरह की पहल को निधि देने के लिए उत्साहित होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अयोध्या में कई विरासत भवन और मंदिर दयनीय स्थिति में हैं, लेकिन मैं उस विरासत मंदिर के रखवाले या मालिक का सम्मान करता हूं जो कम से कम दुकानों को किराए पर देने के लिए संपत्ति का उपयोग करता है। वह व्यावसायिक लाभ के लिए बेतहाशा विनाश या देवता को विस्थापित करने में लिप्त नहीं होता। कॉरिडोर संस्कृति के पीछे के विचार को समझना असंभव है। कौन विश्वास करेगा कि काशी गलियारे में ऐतिहासिक महत्व के कुछ मंदिरों को सिर्फ वीआईपी कारों के आसान आवागमन के लिए ध्वस्त कर दिया गया? राज्य के अधिकारी ओवरफ्लो हो रहे सीवेज जैसी समस्याओं को ठीक नहीं करेंगे और पुरानी इमारतों की मरम्मत या जीर्णोद्धार नहीं करेंगे। वे भीड़ को कुशलतापूर्वक प्रबंधित नहीं करेंगे या नदी या कुंड तालाब को साफ नहीं करवाएंगे। लेकिन एक दिन वे एक भव्य गलियारे के विचार को जनता के गले में ठूंस देंगे। चौड़े रास्ते बनाने, वीआईपी दर्शन कराने और पवित्र तीर्थ स्थलों के पास आलीशान स्वीट बनाने का विचार तीर्थ का स्पष्ट मैकडोनाल्डीकरण है। जिस तरह मैकडोनाल्ड में बर्गर खाने का अनुभव पूरे भारत में एक जैसा है, उसी तरह इसके स्वाद में भी कोई आश्चर्य की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन हिंदू तीर्थ होटल श्रृंखला नहीं है। हर हिंदू तीर्थ का एक विशिष्ट देवता, शास्त्र, अनुष्ठान और इतिहास होता है, और स्थानीय आबादी उसका संरक्षण करती है। मूल मूल्यों की कीमत पर वाणिज्यिक पर्यटन और ड्राइव थ्रू दर्शन को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। अयोध्या और उसके निवासियों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है वह श्री राम के आदर्शों से कोसों दूर है, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम के मानदंड स्थापित किए थे। श्री राम के राज्य के बारे में क्या कहा जाए? ऐसा नहीं है कि इतिहास पुराणों में समृद्ध राज्यों के उदाहरण नहीं है। वेद व्यास बताते हैं कि काशी पर शिवदास का शासन इतना महान था कि देवता भी उसमें दोष नहीं ढूंढ पाए, लेकिन राम राज्य जैसा कुछ भी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास ने राम राज्य का गहरा वर्णन किया है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब सोका, बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, अल्प मृत्यु नहीं कवनी पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र कु दुखी न दीना, नहीं कु अबुध न लच्छन हीना, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी, राम राज नभगे सुनु सचराचर जगमाही, काल कर्म सुभाव गुण कृत दुख काहू ही नाही। जिस क्षण राम सिंहासन पर बैठे पूरे राज्य में खुशी की लहर फैल गई। भय और उदासी ऐसे गायब हो गई जैसे कि वे कभी थे ही नहीं, और नागरिकों को उनके शारीरिक या मानसिक दर्द से मुक्ति मिल गई। कोई भी असमय नहीं मरा, सभी लोग अपने स्वास्थ्य का भरपूर आनंद ले रहे थे। नागरिकों ने ज्ञान अर्जित किया और अपने काम में उत्कृष्टता हासिल की। लेकिन आधुनिक अयोध्या में अयोध्यावासी भय और भ्रम में जी रहे हैं। उनके घरों को बिना किसी पुनर्वास योजना के बुलडोजर से गिरा दिया गया और कुछ दिनों तक उनके परिवार खुले में रहे और लंगर खाकर जीवित रहे। राजाओं या महापुरुषों द्वारा बनाए गए मंदिर, मठ और धर्मशालाएं व्यवसायीकरण के लिए ध्वस्त होने का सामना कर रहे हैं। जब कुछ भी पारदर्शी नहीं होता है तो किसी को संदेह होता है कि राज्य की मंशा दुर्भावनापूर्ण है। यह कभी भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR प्रस्तुत नहीं करता है। अधिकारी लापरवाह होते हैं और नागरिक अनिश्चित भविष्य की ओर ताक रहे हैं। इसका समाधान क्या है? नवीन श्रीवास्तव के नेतृत्व में नागरिकों के एक समूह ने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु का सहारा लेने की अनुमति मांगी है, क्योंकि वे राज्य के झूठ से तंग आ चुके हैं। कैसी विडंबना है! राम राज्य में कोई भी अस्वस्थ नहीं था, लेकिन यहां नागरिक राज्य की कर्तव्यहीनता से बचने के लिए मरने की अनुमति मांग रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां भव्य होटल, भोजनालय और स्मारिका की दुकानें देख सकती हैं, लेकिन जब वे अपनी पहचान की पुष्टि करने के लिए शहर में टहलेंगे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। उनके दिलों में एक खालीपन रह जाएगा जो उन्हें शांति से जीने नहीं देगा। इतिहास का नुकसान पहचान का नुकसान है और इसीलिए सभ्यता का नुकसान है। सुनने के लिए धन्यवाद।